सातर मास रामधाम सिंथल 2013 महाराष्ट्र के मुखारबिंद से सेठ जी के पेड़ ऊपर प्रवचन किया हुआ 1 से लेकर 46 तक।
गोरखपुर में अखंड यज्ञ कीर्तन था, सावन वदी छठ संवत 1993 तारीख 10/7/36 साधकों के लिए उपयोग की अमूल्य बात है। जयदयाल जी गोविंद का बोलते हैं, मुझसे ब्रह्मचारी जी ने साधकों को उपदेश देने के लिए कहा है। ब्रह्मचारी जी माने प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी। मैं तो आप लोगों का बालक हूं, मुझ में न तो उपदेश देने की योग्यता है न अधिकार है। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ कहता हूं, यदि कुछ अनुचित कहूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि बालक क्षमा का पात्र ही होता है। इसमें कुछ मुझसे त्रुटियां हो तो उन्हें भी आप बताने की कृपा करें। जब महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा, कि अपने चारों भाई भीम अर्जुन नकुल और सहदेव इनमें से किसे जीवित करना चाहते हो, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले सहदेव को जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष ने कहा कि केवल सहदेव को जीवित करके आप क्या करेंगे, अर्जुन और भीम जैसे महाबली और महारथी को छोड़कर आप सहदेव की क्यों जिंदा करने की बात कहते हो। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि हे यक्षराज, लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, यदि मैं भीम या अर्जुन को उठा लूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि मैंने राज्य के लोभ में पड़कर अपने भाई अपने धर्म का त्याग कर दिया। इसी से मैंने इन दोनों के बजाय माद्री के पुत्र सहयोग का नाम सहदेव का नाम लिया है। इसी तरह हम लोग साधक कहलाते हैं, अपने कल्याण के लिए अपने को सच्चे साधक बनने की आवश्यकता है। लोगों की दृष्टि में हम बहुत ऊंचे आदमी हैं, लोग हमको साधक मानते हैं, भगवान के भक्त मानते हैं, भगवान के सेवक मानते हैं, और हमको इस बात पर विचार करना चाहिए। यदि लोगों की मान्यता के अनुसार हम भजन ध्यान भगवान की सेवा आदि नहीं करेंगे तो लोगों की भावना पर कितना बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए साधन भजन ध्यान करना चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है। संसार में मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि दिखने में बहुत अच्छी दिखती है, परंतु ये हमारे ही देखने में दिखती है, वास्तव में पतन करने वाली चीज है। हमको केवल मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि के अंदर ही न रहकर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे उच्च कोटि की बात है संपूर्ण समय को भगवान के भजन ध्यान में लगाकर साधना में व्यतीत करना चाहिए। जो भक्त कहलाकर भी अभक्त रहता है उस पर बहुत बड़ा दायित्व है। इसमें अपनी तो हानि है ही, दूसरों को भी हानि है। नेत्रों से आपको जो भी दिखे उसे भगवान का ही दर्शन करके देखो, उसमें भगवान को देखो, उस आदमी की गलती मत देखो, गलत स्वभाव मत देखो, क्योंकि तुम साधक हो। साधक होने के नाते तुम्हें उसमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। जैसे डॉक्टर हमारी आंख देखता है तो वो हमारे आंख में क्या है, किस नस में, किस जगह क्या खराबी है, आंख के अंदर कहां मिट्टी का कण है, कहां कुछ चीज है, वो देखता है जो हमको नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार से संसार में हमको भगवान को ही देखना चाहिए। जिधर भी देखे उधर भगवान ही है। जिस प्रकार ध्यान लगाकर बलदेव जी देख रहे थे, कैसे जिस समय ब्रह्मा जी सब बछड़ों को, ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए और उनकी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए, बछड़ों के रूप में बन गए, गायों के छोटे छोटे बछड़े भी बन गए, गाय भी अपने छोटे बछड़ों को छोड़कर बड़े से प्रेम कर रही थी, उनको चाट रही थी और उन्हें भी वो दूध पिलाने लगी, गाय भी बड़ी मस्त हो गई। ऐसे स्वाभाविक बात को देखकर बलदेव जी ने ध्यान करके देखा, तब उन्हें सच्ची घटना का ज्ञान हुआ। और उन्हें वे सभी भगवत स्वरूप दिखाई देने लगे। आप समझो कि ब्रज में बहुत से लोग थे पर किसी ने भी कृष्ण से आकर ये नहीं पूछा कि कृष्ण तुम्हारा ही स्वरूप मुझे बछड़ों में क्यों दिखता है, तुम्हारा ही स्वरूप सब ग्वाल बालों में क्यों दिखता है, तुम्हारा ही स्वरूप इधर उधर देखने पर क्यों दिखता है। एक बलदेव जी ने कहा है। इस प्रकार से चूंकि बलदेव जी की दृष्टि बड़ी दिव्य थी, ऐसे अपने को सभी में भगवान ही भगवान देखना चाहिए और अपनी साधना से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सब भगवान ही है या ये भगवान के स्वरूप है। और भगवान मालिक है, ये सब भगवान के हैं, इनके मालिक भगवान है, ये सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। नेत्रों से भगवान के गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य आदि की बातों का पठन पाठन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं के लिए अंधा बन जाना चाहिए। जैसे अंधे आदमी को कोई कहे कि ये बहुत बड़ा पर्वत है तो कहेगा मुझे पता ही नहीं। कोई अंधे आदमी को कहे कि इधर बहुत बड़ा जंगल है कि पता नहीं, ये बहुत विशाल वृक्ष है कि पता नहीं। ऐसे ही भगवान के अतिरिक्त हम लोगों को दुनिया में अंधा बनकर रहना चाहिए कि हमें कुछ पता ही नहीं, दिखता ही नहीं। कानों से हमें बहरा हो जाना चाहिए, एक भगवान की बात के अलावा सब बातों के लिए बहरा हो जाना चाहिए। बहरे आदमी के पास कोई कितनी बातें करे उसको समझ में नहीं आती, ऐसे कोई किसी की निंदा करे, कोई हमें कटु वचन सुनाए, कोई हमें लज्जित करे, अपमानित करे, तो बहरा हो जाना चाहिए। दूसरी बातों के लिए बहरे बन जाने के माफिक आपके लिए संसार को भुलाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान के प्रेम प्रभाव आदि के अतिरिक्त दूसरी बातें सुने ही नहीं। ऐसे ही अपने मुख से भगवान के नाम और गुण के सिवाय कुछ न बोले गूंगा बन जाए। इस गूंगे बनने में बड़ा लाभ है। भगवान के अलावा यदि आप कुछ नहीं बोलोगे, गूंगे बने रहोगे, तो आपके मुंह से किसी की निंदा नहीं होगी, झूठ वगैरह नहीं कहा जाएगा, चापलूसी के शब्द नहीं कहे जाएंगे। कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। हाथों से आप सब जीवों की सेवा करो और बुरा काम करने लगो तो उस समय ऐसा समझो कि मेरे हाथ कटे हुए हैं, मैं कर नहीं सकता। पैरों से चलो तो भगवान के नाम गुण प्रेम प्रभाव रहस्य आदि की बातें सुनने के लिए सत्संग में जाएंगे, इन्हीं के लिए पैरों से चलो, अन्यथा पंगु हो जाओ। और जगह जाओ, जाने का काम पड़े जहां भगवान की चर्चा नहीं हो तो मन में समझ लो कि हम पंगु हैं, हमारा पैर काम नहीं करता, हम चल नहीं सकते। हमारे जो इतनी बातें कही हैं उनका यही तात्पर्य है कि हमारे भगवान के लिए सब चेष्टा होनी चाहिए। मन से चिंतन करो तो भगवान का करो, बुद्धि से भगवान के स्वरूप का निश्चय करो और शरीर से भगवान भक्त साधु और ब्राह्मणों की सेवा करो। ये साधकों का बहुत बड़ा कर्तव्य का स्वरूप है। आप विचार करो, एक लोभी आदमी अपना सारा समय रोजगार में लगाता है और वो धन को ही परमेश्वर समझता है। वो चलते फिरते उठते बैठते काम करते हर समय रुपयों की ओर ही उसका लक्ष्य रहता है, उसी उसी का चिंतन करता है, यहां तक कि सत्संग वगैरह में भी बैठता है तो भी उसको रुपयों का चिंतन ही होता है। उसी तरह साधक को हर समय भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, अपने समय को भगवत चिंतन में लगाना चाहिए, उसे ही अपना लक्ष्य और परम धन समझना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होई, पर संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दो। कितनी आनंद की बात है, कथा कीर्तन सेवा आदि सारी क्रियाओं का फल भगवान का ध्यान है और ध्यान का फल परमेश्वर की प्राप्ति है। हमारा साधन उच्च से उच्च कोटि का होना चाहिए। जब करते समय मंत्र के अर्थ की ओर ध्यान करना चाहिए, जैसे राम राम करते हैं तो साथ में ये भी विचार करो कि सब में रम रहा है, जो सब में विराजमान है, जो मुझ में भी है और जगह भी है, सब जगह है, जड़ चेतन सब वस्तुओं में रम रहा है, वो राम है। ऐसे करते राम 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 लेना चाहिए। वाणी के द्वारा जप, मन से चिंतन, बुद्धि से निश्चय कर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का यही सार है कि भगवान कितने दयालु हैं। हे भगवान, आप हमारे पाप को हरते हैं। ओहो, हमारे पाप हमारे चिपके हुए हैं, जैसे घी के मटके में, घी की चिकनाहट में मैला माने मिट्टी वगैरह चिपका रहता है, वो धोने से साफ नहीं होता है। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतर के कितने पाप अंदर चिपके हुए हैं। हे भगवान, आप कृपा करके इनको हरते हो, कितनी दयालुता है। हरे बोल करके सीधा यही भाव आना चाहिए। हरे राम, राम का अर्थ बता ही दिया, तो हरे राम हरे राम, हरे बोलते ही कृपा में डूब जाना चाहिए। राम बोलते ही भगवान में डूब जाना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण बोलते ही कहे भगवान, आप हमको कैसे अपनी ओर आकृष्ट करते हो। हम तो संसार के विषयों में, भोगों में, दुखों में जान जान कर गिरते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें अपनी ओर खींचते हो। खींचने के कारण से आप कृष्ण हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे भगवान के अर्थ में, नाम में डूब जाना चाहिए। कृपा करके पाप को हरने वाले, कृपा कर सब में विराजमान, कहीं दुर्लभ नहीं, और वो प्रेम से हमारी ओर देखने वाले, खींचने वाले प्रभु कितने दयालु हैं। ऐसे मस्त होकर के नाम लेना चाहिए। नाम का लक्ष्य और तात्पर्य नामी की तरफ लक्ष्य कराने का रहना चाहिए। नचिकेता के प्रति यमराज जी कहते हैं कि ओम ही साकार ब्रह्म है और ओम ही निराकार ब्रह्म है। इसी प्रकार राम कृष्ण हरि ये साकार भी हैं और निराकार भी हैं। यदि साकार रूप में मानते हैं तो आदि में भगवान विष्णु रूप में, त्रेता में राम रूप में और द्वापर में कृष्ण के रूप में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। कृषिर भूवाचको शब्दो नश्च निवृत्ति वाचक है, कृष्ण होनेपन का वाचक है, कृष्ण होनेपन का वाचक है और न आनंद का वाचक है। ये आनंद नित्य है। भगवान श्री कृष्ण श्याम रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण माने श्याम है। क्री आकर्षण का वाचक है, क्री ने कृष्ण है, आकर्षण का से छूट गए। राम सब संसार में रमण करे, वह राम है। जिसमें योगी रमते हैं वो राम है, अथवा सब में रमते हैं वो राम है। रे ए और मैं इन अक्षरों से मिलकर राम बनता है। ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद ये राम है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये राम है। भूर्भ स्व ये भी राम है। भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल ये भी राम है। जो आपको त्रिगुणात्मक सृष्टि दिखे वो सब राम है। एक आपको और रहस्य की बात बताते हैं कि हर नाम तो शिव का है ही, हरि भी शिव का ही वाचक है, क्योंकि हरि माने बानर और भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में बजरंग देव बनकर अवतरित हुए हैं, तो हरि भी नाम शिव का ही है, समस्त पापों को हरने वाला है, इसलिए भगवान का नाम हरि है। हरि के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जन्म भर में चांडाल भी उतना पाप नहीं कर सकता है जितने पापों को हरि नाम संवार लेता है, माने नष्ट कर देता है। मतलब पापी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वो पाप कर सके, नाम है वो सबको समाप्त करता चला जाता है। जैसे बहुत बड़े पानी के वेग में किसी तिनके के रहने की ठोर ही नहीं वो बह जाता है, ऐसे पापी के जितने पाप हैं, चंडाल के जन्म भर के पाप हैं, वो पाप हरि शब्द के उच्चारण के बाद रह ही नहीं सकते हैं, कोई ताकत ही नहीं है, वो बह जाते हैं। और भगवान स्वयं नरसिंह बने, नर हरि बने, इसमें भी भगवान का नाम हरि आता है। भगवान का जो राम कृष्ण हरि, वह साक्षात साकार और निराकार ही ब्रह्म है, नाम नामी से अधिक नामी है। नामी भले ही हमको न मिले पर नाम को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, नामी माने भगवान। नामी हमको नहीं भी मिले तो नाम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नाम में ही नाम, नाम में ही नामी विराजमान है। लेकिन नामी में नाम विराजमान हो ये हम नहीं कहते, नाम में नामी विराजमान है। जब करते समय उसके अर्थ की तरफ ऐसा ध्यान करते हुए करना चाहिए। साधक को ये भी चाहिए कि परिवार में सेवा कार्य वो करो जो दूसरे करने में संकोच करते हो, जो कष्ट का काम हो और जिसमें औरों की रुचि नहीं है लेकिन करना बहुत जरूरी है, ऐसे काम को करना चाहिए, अपने आगे होकर करना चाहिए। मतलब परिवार में कोई कठिन काम हो और दूसरे लोग करना ही नहीं चाहेंगे, हम नहीं करते, वो काम करो, वो सेवा होती है। माताओं बहनों के लिए बताते हैं, भोजन करते भोजन बनाते समय इधर गर्मी होती है, इधर भोजन बनाना होता है, और कोई यदि उसमें अरुचि रखता हो कि कौन गर्मी में माथा फोड़ी करे, तो दूसरी माताओं बहनों को देखना चाहिए कि हम आगे आएंगे, हम भोजन बनाएंगे। भोजन करते समय अच्छे पदार्थ हो, बढ़िया लगे, वो दूसरों को दे, और स्वयं शेष बचा हुआ प्रसाद ले, इससे आपका मन बड़ा पवित्र होगा। सबसे बड़े काम तो ये होगा कि बचा हुआ भोजन लेने से आपका स्वभाव ये हो जाएगा कि दूसरों को हम अच्छी वस्तु देवे और हम चाहे जैसे निर्वाह कर लेवे, इससे आपकी संसार में भोगों में पदार्थों में इनमें रुचि नहीं रहेगी। ये सेवा असली ध्यान से कम नहीं होती, इस सेवा में दूसरे की ओर नहीं देखना चाहिए। सेवा में थोड़ा परिश्रम पड़ना लगे तो वो तपस्या समझनी चाहिए। सेवा से अंतःकरण बहुत जल्दी निर्मल होता है। जब परिश्रम और सेवा का काम आए तो घर में हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम आगे आवे, और आराम की जब बात आए तो अपने को सबसे पीछे नंबर में रखना चाहिए। ये बातें हम बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। जैसे तपस्या करना कठिन होता है, ऐसे ही अपने सामने आए हुए आराम का त्याग कर दूसरों को आराम देना कठिन बात तो है, लेकिन जो स्वभाव बना देता है ऐसा ही, उसके लिए फिर कोई कठिन नहीं होता। भोजन करो तो उस समय भगवान के ध्यान में मस्त होकर भोजन करो। हे प्रभु, मैं आपका ध्यान नहीं करता, मैं आपको याद नहीं करता, और आप देखो मुझे मौके पर भोजन दे रहे हो, जल दे रहे हो, आप मुझे कितना याद करते हो, आप मेरे से कितना प्रेम करते हो, आप मुझे कितना चाहते हो, और मैं कैसा निष्ठुर हूं कि जो आपको भूलता हूं। हे प्रभु, भोजन में जो पदार्थ सब वो आप ही हैं, आप ही रोटी हैं, आप ही दाल हैं, आप ही चावल हैं, आप ही साग हैं, जो पदार्थ है वो आप ही हैं। हे प्रभु, आप भोजन बनकर मेरी क्षुधा को दूर करने के लिए साक्षात पधारे हो, मेरा आप कितना ध्यान रखते हो। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। अभिप्राय यह है कि ऐसा विचार करते भोजन करो, स्वाद बुद्धि से मत करो। हमने क्या खा लिया, क्या पी लिया, हमको कैसा भोजन मिला, इसका ध्यान बिल्कुल मत करो। इसका ध्यान करने से आप भगवान से दूर हो जाओगे। अपना सारा समय हम बताए उसके अनुसार बिताना चाहिए। प्रातः 4 बजे उठो। प्रातः 4 बजे उठो, पहले परमेश्वर का ध्यान करो, फिर शौच स्नान आदि करो, फिर संध्या करते हो संध्या करो। संध्या में गायत्री जाप तो हो ही जाता है, उसके पश्चात 3 घंटा ध्यान के लिए निकालो। आप कहोगे 3 घंटा निकालना बड़ा मुश्किल है, तो कम से कम 1 घंटा तो निकालना चाहिए। ध्यान के ऊपर विशेष ध्यान देना, कथा कीर्तन और ध्यान के साथ इतने तन्मय हो जाओ कि ध्यान के अतिरिक्त किसी बात की जरा भी खबर न रहे। मन में बड़े प्रसन्न होकर ध्यान करो कि अरे भगवान आ गए, ओहो भगवान साक्षात मेरे हृदय में ही थे, वो प्रकट हो गए। जैसे दिया सलाई में आग तो है लेकिन प्रकट नहीं थी, अब प्रकट हो गई आग, ऐसे ये मन में ये भगवान प्रकट हो गए, ये भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान से आप खूब खेल भी कर सकते हो, देखो भगवान आप छिपे रहे लेकिन प्रकट हो गए, हमने आपको देख लिया, अब आप छिप नहीं सकते हो। कहाँ छिपोगे, जहाँ आप छिपोगे वहाँ आप पहले से ही हो। ऐसे भगवान से खूब विनोद भरी बातें भी करते रहो। इस प्रकार का ध्यान करें, और आप कहो कि हम तो ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान लगता ही नहीं है, तो फिर आप मन में घबराओ और रो, भगवान के सामने रो। देखो आप लोग सत्संग में आते हो आनंद के लिए, लेकिन हम आपको रोने की बात बताते हैं, परंतु इस रोने में बहुत बड़ा आनंद छिपा हुआ है। खूब रो, उनसे प्रार्थना करो, पर अकेले में रो। मैं आपकी शरण में हूं, मेरा कोई बस नहीं चलता है, आपके सिवा दूर तक दृष्टि फैला कर देखता हूँ तो मेरा कोई नहीं है, कितना असहाय हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा मन आप में लगे, लेकिन कितना विवश हूँ, संसार में कोई भी मेरे मन को आप में लगा नहीं सकता। इसलिए अंतिम द्वार आप पर ही आया हूँ, आपके दरवाजे पर पड़ा हूँ। हे प्रभु, मुझे निराश मत कीजिए, मेरा कोई सहायक नहीं है। इस विषय में आपकी सहायता की मुझे बहुत बड़ी जरूरत है। हे प्रभु, आपके अलावा किसके पास जाऊं, ऐसा विलाप करें। मन को समझाए कि अरे मन, तू कितनी बड़ी भूल करता है, जिस संसार से तुझे बिछुड़ना है, जो संसार तुझसे बिछुड़ता है, जिसने सदा तुमको निराश किया है, जिस संसार से तुम्हें आज तक कुछ नहीं मिला है, तो उधर ही उधर दौड़ता है, तूने कभी विचार ही नहीं किया। अरे देख, प्रभु की बड़ी भारी कृपा है, जो पहले ही पहले हमको मानव शरीर दिया है। यदि ईश्वर की दया नहीं होती तो ये मानव शरीर हमें कैसे मिलता। ईश्वर और महात्माओं की इतनी दया होते हुए भी हम उस दया को नहीं समझे, कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। ए पाजी मन, अभी भी संभल जा, तू हमको मूर्ख मत बना। तेरी मूर्खता की बातों में हम बहुत फंस गए, अब हम सत्संग में जाने लग गए हैं। तुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगती है सत्संग की, परंतु हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है। इतने पर भी यदि हम तुम्हारे कहे के चलेंगे तो फिर हमारे शरीर का कौन मूर्ख होगा, तूने हमको बहुत मूर्ख बना दिया। अरे हम जिस काम के लिए आए थे वह काम हमको जल्दी बना लेना चाहिए था, परंतु तेरे चक्र में आकर हम इधर उधर अटक गए। अब हम किसी प्रकार से तेरे साथ संसार में नहीं चलेंगे। हाँ, यदि तू भगवान की तरफ चलने की बात कहे तो हम तेरा बहुत बड़ा उपकार मानेंगे। हे मन, भगवान में खूब जोर शोर से लग जाए, देख फिर तेरे को विषय कैसे याद आ सकते हैं। अधिक से अधिक भगवान में लग जाओ, ऐसा आप साधन करते रहोगे तो आप बहुत जल्दी भगवान में लग जाओगे। लेकिन यदि आप सत्संग भी सुनते हो, ढीले ढीले होकर चलते हो, थोड़ा संसार भी भोगते हो, थोड़ा परमात्मा की तरफ भी चलते हो, तीव्र गति नहीं होती है, धीरे धीरे साधन करते हो, तो फिर आपको कई जन्मों में जाकर सिद्धि मिलेगी। जितनी अधिक जोर से कोशिश की जाएगी उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम तो ये कहते हैं कि कोशिश करने से 12 महीने भी नहीं लगे आपको भगवान साक्षात दर्शन दे सकते हैं। उससे भी विशेष कोशिश करें तो 6 माह में भगवान का दर्शन संभव है। अब और क्या कहें, 1 मास में भी कोशिश करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और आगे कहें तो 1 मास में क्यों, 1 दिन में भी भगवान मिल सकते हैं। और अंतिम बात हम कहते हैं कि अत्यंत उत्कंठा से प्रयत्न करने पर, श्रद्धा विश्वास होने से भगवान तो 1 क्षण में भी साक्षात दर्शन दे सकते हैं। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, जैसे एक आदमी कलकत्ता जा रहा है, यदि वो पैदल पैदल जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। घोड़े की सवारी से जाएगा तो पैदल चलने से कम समय लगेगा, और यदि रेल से जाएगा तो दो दिन में ही पहुंच जाएगा, और हवाई जहाज से जाएगा तो थोड़े ही समय में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। अत्यंत उत्कंठ इच्छा है, श्रद्धा और विश्वास है तो वो वायुयान की यात्रा है। मन में खूब विश्वास रखो, मुग्ध हो जाओ, भगवान आएंगे, आ जाएंगे, अभी आते हैं। इसी तरह भगवान के दर्शन करने की प्रतीक्षा करते हुए सदा प्रसन्न चित्त, उत्सुक और मुग्ध रहना चाहिए। भगवान के स्वरूप, लीला, गुण, प्रेम, प्रभाव और रहस्य को बार बार याद करके हमेशा हमेशा मुग्ध रहना चाहिए। भगवान की शरण ग्रहण करके अभिमान आदि दोषों को हटाना चाहिए। ये धारणा मन में मत रखो कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, भगवान हमको थोड़े ही मिलते हैं, हमारे तो कर्म ही अच्छे नहीं है। ऐसा आप यदि मन में भाव रखोगे तो आप भगवान के लिए स्वयं ही आड़ पैदा करते हो, इसके लिए भगवान मिलने फिर कठिन ही हो जाएंगे। ये धारणा ही मत रखो। यदि भगवान नहीं भी मिलते हैं तो ये मानना तो ठीक है कि हमसे कोई भूल हो रही है, लेकिन कायदा देरी से मिलने का नहीं है। आप देरी से मिलने का कायदा ही मान लोगे कि भगवान तो देरी से ही मिलते हैं तो फिर भगवान देरी से ही मिलेंगे, ये कायदा मत अंदर रखो। और जो ये सुगम मानता है कि भाई शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं भगवान की प्राप्ति सुगम है सुगम है, उसकी धारणा ही बनते बनते सुगम हो जाएगी। यदि यह मानता है कि भगवान आज मिलेंगे, मुझे तो आज जरूर मिलेंगे, आज जरूर मिलेंगे, ऐसे जरूर मिलेंगे, दृढ़ विश्वास हो जाए तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। आप विचार करो, एक राजा की कोई दया की बात आपके प्रति निकल जाए, राजा कहे कि आप चिंता मत करो, आपका इस राज्य में कोई भी काम होगा मैं बना दूंगा, ऐसी कोई राजा दया करके बात कहे तो वो मनुष्य कितना निश्चिंत हो जाता है, कितना प्रसन्न हो जाता है, कितना निर्भय हो जाता है, और उसको इस बात का गर्व होता है कि मेरे पास राजा की शक्ति है, यहाँ का राजा मेरा खास है, इसलिए वो अपने में बहुत अभिमान करता है। और इधर जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, साक्षात परम दयालु परमेश्वर हैं, और वो भगवान ये कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापी विमोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो हमें कितना प्रसन्न होना चाहिए। राजा कोई दया करेगा तो धन दे देगा, दया करेगा तो अपने राज्य में बसा देगा, दया करेगा तो बाहर की सुविधाएं दे देगा, दया करेगा तो बाहर के तकलीफ को नहीं आने देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा, पाप से तो मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन भगवान पापों से मुक्त करते हैं, इसलिए भगवान की दया इस संसार में सबसे बड़ी दया है, करोड़ों गुणी ज्यादा है। ऐसे भगवान के अंदर हमको बड़े प्रसन्नता से डूबे रहना चाहिए। अभी समाप्त नहीं हुआ, ये आधा हुआ है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण
नारायण
श्रीमन नारायण।